and welcome to Days of Our Lives, Mint's audio history series on liberalization and the ordinary man. Here, you will hear stories of how life changed for most people, be it the Sunshine Boy or the CEO following the reforms of 1991 in their voices.
Last you heard the story of how real estate made riches for its players in the new economy. Today, we bring you the story of a fifth-generation jeweler who has seen a lot of change over the course of the past 25 years, but not the love for gold. That still remains intact.
अब जो है, ऐसा नहीं है कि जब लोगों के पास कुछ पैसे आते हैं, कहीं से पैसे आते हैं, लोग ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहता है। पहले ये सब नहीं था। पहले तो बस कभी शादी विवाह पड़ेगी, तभी आप जो है कि ज्वेलरी खरीदेंगे, वरना तो लेडीज की हिम्मत ही नहीं थी कि वो ज्वेलरी शॉप में जाके और ज्वेलरी खरीद सके।
बनारस, a city that is older than history, older than tradition, older than even legend, and looks twice as old as all of them put together. And if you won't believe Mark Twain, then who will you? Situated on the banks of Ganges, Banaras, legend goes, was established by Lord Shiva himself over 5,000 years ago. Today, parts of Banaras are indistinguishable from any small city turning big in India. There is the bad traffic, the incessant honking, the potholes, and the soulless expansion. But there are also parts of it, the oldest parts actually, the part that the locals still lovingly refers to as Kashi, which remains untouched from it all. This is the Kashi of the medieval streetscape, with lanes that are only one person wide, but still manage to accommodate hawkers, cattle, tourists, and locals all alike. This is the Kashi where wholesale trade of saris is still conducted over gaddis, endless cups of sweet tea, and the famed Banaras chaat. This is the Kashi of the ghats, all 87 of them, each with a story, a legend that leaps out at you as you sail past them. It's a little impossible to be indifferent to Banaras once you visited. Locals say that the city lives in your soul. As travelers, we will tell you that it definitely gets under your skin. Today, we're in Banaras to talk to Anoop Agarwal, a fifth-generation jeweler. We are to meet him at the first store of Kanhaiya Alankar Mandir, set up sometime in 1910, and learn about the impact of reforms on the jewelry business.
I'm Anoop Agarwal, and I'm Kanhaiya Lal Saraf family. So this is my fifth generation, which we are in the jewelry trade. पहले हम लोग जो है कि हाथ से घर घर जाके जो है कि बेचते थे, फिर जो है कि 1910 में हम लोगों ने अपनी पहली शॉप इस्टेब्लिश करी राजा दरवाज़ा, जो मेरा पैतृक मकान है वहीं पे नीचे में। हम लोगों ने तो अपनी दुकान में आके 5-6 साल की उम्र से कस्टमर डील करना चालू कर दिया था। जब से हम लोग छोटे छोटे थे, 7-8 साल में थे, गर्मी की छुट्टी में हम लोग कहीं घूमने नहीं जा पाते थे क्योंकि उस समय लगन होती थी, तो सबकी ड्यूटी लग जाती थी दुकान में।
कैसा होता था 70 और 80 के दशक में ज्वेलरी का बिजनेस? मतलब
देखिए, ये बेसिकली ये सारा खेल राउंड अबाउट होता है गोल्ड कंट्रोल के। गोल्ड कंट्रोल हिंदुस्तान में जब लगा, उसके बाद से बहुत सारी ज्वेलरी की दुकानें बंद हो गई।
The Gold Control Act was introduced in 1968, but the seeds for it were sown in 1962 itself, when following the 1962 dispute with China, India faced a huge foreign exchange crisis. From recalling gold loans to banning production of gold jewellery above 14 carat, several steps were taken, but they failed to stabilize India's foreign exchange problem. It was then, in 1968, that the Gold Control Act was introduced. Agarwal explains just what it meant for the common man, both the buyer and the seller.
उस समय ये था कि आप एक घर में 150 ग्राम से अधिक सोना नहीं रख सकते हैं। सोने को आप जेवर के फॉर्म में ही रख सकते हैं, सॉलिड में नहीं रख सकते हैं, कॉइन्स में नहीं रख सकते हैं, ये सब पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस आए। मतलब एक कंट्रोल सा लग गया।
अच्छा, तो आसानी से मिलता नहीं था,
गोल्ड भी नहीं मिलता था, मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट थी, लिखा पढ़ी बहुत ज़्यादा थी, और जिसकी वजह से जो स्मॉल प्लेयर्स थे वो ख़त्म हो गए।
और ज्वेलर्स के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन?
ज्वेलर्स के लिए भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो इससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रख सकते हैं। उस समय करीब मेरे ख्याल से था करीब 10-12 किलो आप रख सकते थे, उससे ज़्यादा आप स्टॉक भी नहीं रख सकते, क्योंकि पूंजी भी तो होनी चाहिए ना। सिर्फ एक नंबर की पूंजी से आप गवर्नमेंट से ही सोना खरीदते, उसी की ज्वेलरी बनवाते और वही आप बेच सकते। आप सोने को कहीं पे गलवा नहीं सकते थे, वो गवर्नमेंट रिफाइनरी में जाता था गलने के लिए, फिर वो होके आता था, फिर वो स्मॉल आर्टिशियंस को दिया जाता था।
In this day and age of glitzy gold souks, attractive schemes and jewelry brands that promote gold as a lifestyle, it is difficult to imagine a time when consumption and possession were controlled. But pre-reforms India, as we all know, was a very different land altogether. The days of gold control were also the days when gold was not sold in grams, but bhari, as Agarwal explains.
उस समय तो हमारे पास तो बिल भी है, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ. जब मेरी दुकान खुली थी उस समय 50 रुपये भरी का सोना हुआ करता था.
भार क्या हुआ?
11.664 मिलीग्राम्स इज इक्वल टू 1 भार. तो पहले तो सब चीज भार और आना में ही चलता था, अब सब चीज ग्राम में चलने.
बट इवन विद गवर्नमेंट इशूड कंट्रोल्स, द लस्ट फॉर गोल्ड नेवर लेसेंड. Sure, people purchased it only during weddings, but the demand was high enough for Agarwal's family to put in 14-hour-long working days as customers queued patiently, armed with a token no less, for their turn to get their hands on some of that lovely shiny metal.
80s का time कैसा?
80s के time में भी जो है कि control तो था ही. ये जो gold control हटा है, वो 90 में जाके हटा है. तो 90 के पहले जब तक गोल्ड कंट्रोल था तब तक तो बहुत पाबंदियाँ थी, और इसीलिए डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी. हम लोगों की दुकान 9 बजे खुलती थी और सवेरे 6 बजे से हमारे कस्टमर आके सामने बैठ जाते थे और उनका नंबर लगता था.
अच्छा.
और उनका नंबर आता था दोपहर को 2-2 बजे तक.
अच्छा.
और रात को हम लोगों की दुकान बंद होती थी रात को 11-12 बजे तक.
इंडिया वाज टू फेस अनदर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस इन 1990. दिस वन सिवियर इनफ टू चेंज द कोर्स ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी. द रिपीलिंग ऑफ द गोल्ड कंट्रोल एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन.
जब 1990 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट को अबॉलिश किया गया,
कम्प्लीटली
अबॉलिश किया गया, उसके बाद से बहुत दुकानें बढ़ी. कम से कम सिर्फ वाराणसी में 3,000 दुकानें तब से अभी तक में खुल चुकी हैं.
उस वक्त जब उससे पहले कितनी थी? जब
उसके पहले तो गिनती की 100-150 दुकानें हुआ करती थी बस, खाली छोटी बड़ी सब मिला के.
Today, the government has made it mandatory for all jewelers to get gold jewelry hallmarked by centers approved by the Bureau of Indian Standards. This is primarily to ensure that customers do not get duped into buying jewelry of inferior quality or of lesser weightage than sold. Currently, this is optional, but this will ensure a standard benchmark for quality across the country.
उस समय जो है, ज्यादातर लोग जो है, purity को उतना महत्व नहीं देते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं वो प्योरिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं. ये जो हॉल मार्किंग सिस्टम जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इसमें यह है कि आपके कितने कैरेट का माल आप बनाते हैं उस पर उतने कैरेट की गवर्नमेंट की मोहर होनी चाहिए.
द नीड फॉर हॉल मार्किंग ज्वेलरी स्टेम्स फ्रॉम द कंज्यूमर्स कंसर्न्स. टुडे अ कस्टमर इज फार मोर अवेयर देन दैट ऑफ अ जनरेशन अगो, एज अनूप एक्सप्लेन्स इट.
अब कस्टमर बहुत जागरूक हो गया है. वो चाहे शहर का कस्टमर हो, चाहे गांव का कस्टमर हो, और चाहे वो इलिटरेट कस्टमर हो, वो आज की डेट में आके शुद्ध सोने की बात करता है. उस सोने की बात करता है जिसकी की रिटर्निंग वैल्यू उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके.
From collections inspired by different periods of history, to designs favored by royalty, to wedding jewelry, there is an amalgamation of different styles. There is a plethora of options to choose from today for the demanding consumer. The demand for and the option of designs in jewelry is a fairly recent phenomenon that Agarwal traces directly to reforms. Before that, the most popular necklace style, at least in North India, he explains, was the Ram Navami necklace, two thick panels of gold with a pendant the size and shape of which would vary according to the customer's pocket.
Designing ki aaj ki date mein bahut zyada marketing ho gayi hai.
ये
पहले तो डिज़ाइन ही नहीं हुआ करती थी. हाँ. कुल राम नामी हुआ करती थी. हाँ. उसकी 5-6 तो डिज़ाइन हुआ करती थी, उसी में आपको लेना है.
हाँ.
आज की डेट में देर इज अ वाइड वैरायटी रेंज ऑफ डिज़ाइंस विच आर प्रिवेलिंग इन द मार्केट.
ये कहाँ से, मतलब कैसे लोग कस्टमर डिमांड से है
या नहीं? लोगों ने डेवलप किया है वक्त के साथ, लोगों ने डेवलप करी है. पूरे पूरे जो आर्ट्स के लोग हैं वो दिन भर बैठ के ज्वेलर्स के यहाँ डिजाइनिंग करते रहते हैं. पहले ये सब कुछ नहीं हुआ. पहले तो सुनार ही डिजाइनर थे, सुनार ही आर्टिशियन थे, सुनार ही मैन्युफैक्चरर थे.
ये कब से फर्क आने लगा डिजाइन का, ज्वेलरी डिजाइन का कॉन्सेप्ट?
ज्वेलरी डिजाइन का कॉन्सेप्ट 2000 से बहुत ज्यादा चल रहा है.
अग्रवाल मेंशंस टाइम एंड अगेन that weddings were the only occasions when people purchased jewelry before the 90s. But now, purchasing of jewelry is a routine activity. Have some money saved? Let's head to the family jeweler. Feel like patting yourself on the back? This one especially for the ladies. Well, your neighborhood jewelry store has several options that you can even wear to work every day. And this demand has not grown organically. The jewelry industry too has contributed to it by pushing formerly obscure occasions like Akshay Tritiya into a gold buying occasion.
देखिए आज की डेट में ज्वेलरी जो है हर ओकेजन पे खरीदी जा रही है। आजकल ऐसा नहीं है कि अभी सीजन नहीं है। आजकल 12 महीना ज्वेलरी बिक रही है। छोटी-छोटी शादी हो, चाहे किटी पार्टी हो, चाहे कोई ट्रेडिशन हो, अक्षय तृतीया हो, ये पिछले 5-6 साल से ट्रेंड चालू हुआ है कि अक्षय तृतीया एक सिंबॉलिक वो माना गया है जिसमें कि लोग ज्वेलरी खरीद।
ये कहाँ से टीवी शो से आया है, किससे आया अक्षय तृतीया का?
देखिए कुछ तो जो है कि हम लोगों ने और पंडितों ने भी थोड़ा सा ये दिया,
पुश
किया है।
इन 1994 टाइटन लॉन्च्ड अ ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क and changed the face of jewelry retail. Well-established, family-owned jewelry setups also went national with fancy showrooms, new designs, and of course, hallmarking. Agarwal explains just how the entry of organized players forced setups like his also to up their game.
देखिए जो ब्रांड जितने भी आए हैं, चाहे आप मेहरा सन्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप कल्याण ज्वेलर्स की बात कर रहे हैं, चाहे आप तनिष्क की बात कर रहे हैं, रिलायंस की बात कर रहे हैं, ये सब गोल्ड कंट्रोल के बाद से ही इन्होंने अपना पैर पसारना चालू किया है।
इनका टारगेट कस्टमर कौन है?
देखिए इनका टारगेट कस्टमर ज़्यादातर है नौकरी पेशे का लोग, जहाँ फिर बात घूम के आ गई हॉल मार्किंग पर। ये लोग हॉल मार्क्ड ही प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो इसलिए नो डाउट इनके आने से एक ब्रांड के प्रति लोगों का आकर्षण और रुझान बढ़ा है। उसकी दो वजह है, एक तो डिज़ाइनिंग और दूसरी प्योरिटी, तीसरी गारंटी। वो गारंटी देते हैं कि अगर हमारा ये यहाँ से अगर आप सोना लेंगे तो आपको इतना परसेंट इसमें सोना मिलेगा ही मिलेगा। तो हॉलमार्क का बहुत बड़ा प्रभाव इन ब्रांड्स के आने से पड़ा है।
बट द फिलिप हैड ऑल्सो हैड अ डाउनसाइड, स्पेसिफिकली द वेट ऑफ ज्वेलरी, वेयर अर्लियर नेकलेसेस लेस देन 10 ग्राम्स वर अनहर्ड ऑफ, राइजिंग गोल्ड प्राइसेस हैव इंश्योर्ड दैट लाइटर ज्वेलरी हैज नाउ बिकम द नॉर्म।
ज्वेलरी में सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि उसके भाव बहुत बढ़ गए सोने के। 19 अगर 60 से अगर आप देखेंगे तो 50 रुपए भरी से लेकर आज की डेट में 30,000 रुपए 10 ग्राम का भाव हो गया। तो जैसे जैसे भाव बढ़ा तो नो डाउट लोगों की ग्रामेज कम होती गई। तो अब जो है कि जो रामनामी वाला हार जो है वो बहुत भारी बनता था, अब बहुत हल्की हल्की बनने लगे। अब 30-30 ग्राम में, 20-20 ग्राम में, 10-10 ग्राम में नेकलेस बनने लगी है।
पहले
तो कम से कम भर में चलता था, तो डेढ़ भर, दो भर।
The reforms of 1991 brought about a sea change in the way Indians purchased gold. India's love affair with the metal is hard to explain. It is not just a status symbol, but also a form of security blanket. The repealing of the Gold Control Act, coupled with increased spending power of the populace, has meant that nearly everyone connected with the business has prospered. Agarwal's family started out with 3 stores and today are well established in the entire eastern UP belt. Chota mota hi sahi, hum bhi ek brand hain, he says. This interview was conducted by Nikita Doval. This podcast was produced by Anik Biswas.